मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 17 जुलाई 2017 है। दो दिनों के गैप के बाद हम लोगों की आपस में मुलाकात हो रही है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दो दिनों के बीच आपने जो अपने बचे हुए काम हैं वे निपटाए होंगे और अगर नींद अधूरी रही होगी तो उसे पूरा किया होगा, और यदि कुछ और ऊर्जा की कमी आपको महसूस हो रही होगी तो आपने वह ऊर्जा भी फिर से प्राप्त कर ली होगी। यानी कि आज पूरी एक नई ताजगी के साथ आप नए सप्ताह का स्वागत करने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार होंगे। तो मित्रों, आइए इसी मुद्दे पर आज कुछ बातें करते हैं। और सच पूछे तो यह मुद्दा मुझे मिला, कल एक खबर आई थी और आप लोगों ने भी सुनी होगी, चैनल्स पर भी वो न्यूज दिखाई गई। और वो खबर ये थी फ्रेंड्स कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, नाम आपने शायद सुना हो, यह अमेरिका की बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में है। अमेरिका की नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्धतम यूनिवर्सिटी में है। शुरू के जो विश्व के 10 महत्वपूर्ण संस्थान माने जाते हैं उनमें से मुझे लगता है कि फर्स्ट 5 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है। यदि आप इस स्टीव जॉब्स के नाम से परिचित हों, जिन्होंने आज एप्पल बना करके पूरी दुनिया की जीवन पद्धति को बदल दिया है, स्टीव जॉब्स जो बहुत जबरदस्त किस्म के जो एक प्रबंधक कहलाते हैं, विजनरी लीडर कहलाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही वो पढ़कर निकले थे। और उन्होंने वहां एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है कन्वोकेशन एड्रेस में, बहुत ही खूबसूरत उनका भाषण है। मित्रों, वह आप लोग जरूर सुने, भाषा के स्तर पर भी सुने और मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुने और लाइफ मैनेजमेंट के लिहाज से भी सुने। बहुत ही खूबसूरत भाषण है उनका, मुश्किल से 8-10 मिनट में आप उसे पूरा सुन लेंगे। इसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है, उस स्टडी में उन्होंने ये शो किया है कि 46 देशों में उन्होंने स्टडी की, 46 कंट्रीज में, और उसमें उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि पैदल चलने के मामले में कौन देश कितना आगे है। तो 46 देशों में जो भारत का स्थान है वो 39वां है। 46 देशों में भारत का स्थान 39वां है, जो यूं कह लीजिए कि चलने फिरने से परहेज करते हैं। तो भारत चलने फिरने से काफी परहेज करता है, चाइना हमसे काफी आगे है। ये एक छोटा सा निष्कर्ष है। मित्रों, मैं निष्कर्ष की सत्यता पर नहीं जाता, क्योंकि ये जो निष्कर्ष निकाले गए हैं ये स्मार्टफोन के आधार पर ही निकाले गए हैं, मतलब फोन से पूछ करके निकाले गए हैं। और स्मार्टफोन का उपयोग आप जानते हैं कि हमारे गांव के लोग नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा चलने फिरने का काम गांव के लोग करते हैं। वहां तो पता लगा कि एक महिला को रोजाना पानी लेने के लिए ही 2-3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, और छोटे छोटे काम के लिए गांव वालों को जाना पड़ता है। अगर उनको वो शामिल कर लिया होता उन लोगों ने तो शायद तस्वीर कुछ दूसरी होती, लेकिन चलिए हम इसे शहरों तक ही सीमित मानते हैं, एवरेज नहीं मानते हैं। यह निष्कर्ष मित्रों आया है। मैं इस पर सोचने लगा कि भारत के संदर्भ में ये कितना सही है कितना गलत है, ये शहरों पर आधारित है, लेकिन मुझे यह गलत भी नहीं लगता है। मुझे गलत इसलिए नहीं लगता है ज्यादा, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि मैंने शहरों की जीवन पद्धति न केवल देखी है बल्कि उसे जिया भी है। और दरअसल सच पूछे तो जो सामंतवादी संस्कृतियों वाले समाज हैं, सामंतवादी विचारधाराओं वाले समाज हैं, वो अभी भी, जबकि मॉडर्न एज आ चुकी है, हेल्थ की इतनी दूसरी समस्याएं हमारे सामने, सिर्फ इसलिए कि हमने शारीरिक श्रम को का किनारे कर दिया है, इसके बावजूद हम अभी श्रम की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं। और इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है मित्रों, वह है हमारी सामंतवादी चेतना का होना। नो डाउट कि आज शहरों की जीवन पद्धति इतनी भागम दौड़ वाली हो गई है कि आप पैदल चलना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप देखिए कि गाड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, मोहल्ले में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं रह गई। बाजार जाने का मन इसलिए नहीं करता कि आप गाड़ी कहां पार्क करेंगे। बाइक की भीड़ है, साइकिल गायब होते चले जा रहे हैं, साइकिल अब आपको दृश्य में दिखाई नहीं देंगे। हाँ, कोटा वगैरह शहर में आप जरूर जाएंगे तो वहां पता लगा कि स्टूडेंट्स की साइकिलें खड़ी हैं पूरे के पूरे साइकिल पार्क में, और वो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोगों को पुराने दिन याद आते हैं जब हम लोग फिल्में देखने जाते थे तो साइकिल स्टैंड हुआ करता था और वहां हम लोग अपनी साइकिल पार्क करके फिल्में देखते थे। कॉलेज जाते थे तो वहां साइकिल स्टैंड हुआ करता था, अब तो वो सब गायब है। मित्रों, इसका कारण सामंती चेतना तो है ही, जो श्रम को हिकारत की नजर से देखता है, श्रम को सम्मान नहीं देता, वो उसे घटिया काम समझता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो हमारे बड़े लोग होते हैं, जब वो अपनी कार से उतरते हैं या कार में बैठना चाहते हैं तो वो अपने हाथ से अपनी कार का दरवाजा खोलना अपमानजनक समझते हैं। ड्राइवर बकायदे गेट दरवाजा खोल करके कार का फिर उनको बैठाता है और जब वो गाड़ी रोक देता है तो फिर जल्दी से उतर कर आता है या फिर कार का दरवाजा खोलता है। या फिर आप यूं कह लीजिए कि आप बड़े बड़े अच्छे होटल में चले जाइए, 5-star 3-star होटल में, तो आप पाएंगे कि वहां दरवाजे पर पोर्च में बकायदे एक संतरी खड़ा होता है और जैसे आपकी कार पहुंचती है वो संतरी भाग कर आता है और आपके दरवाजे को खोलता है। तब आप बड़ी शान के साथ उससे उतरते हैं और इससे यूं कह लीजिए कि उसके द्वारा दरवाजा खोले जाने से हमारा जो ईगो है उसकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी थोड़ी सी आव भगत हो जाती है और हमें अच्छा लगता है। और इसके विपरीत अगर कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं मिला तो हालत खराब हो जाती है और वो अंदर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने बेवजह हमारा अपमान कर दिया और फिर हम बरस पड़ते हैं, मतलब उसे एक शिकायत के रूप में लेते हैं। तो मित्रों, यह तो थी सामंतवादी चेतना की बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह हमारी मानसिक जड़ता की भी बात है, एक मानसिक अवस्था है। मानसिक अवस्था अगर मैं कह रहा हूं तो उसे आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि कहीं न कहीं हमारा एक आलस्यपना भी वह एक है। देखिए, जो आलस्य होता है वह शरीर में उतना नहीं होता, शरीर में तो मुझे लगता है कि होता ही नहीं है। शरीर में तो वह तब होता है जब शरीर की ऊर्जा चूक गई हो, बहुत हम बुरी तरह से थक गए हैं, सोए सोए नहीं थके हैं, काम करने के बाद थके, क्योंकि बहुत लोग सोए सोए भी थक जाते हैं, काम करने के बाद थके हैं दिन भर, चाहे हमने शारीरिक श्रम किया हो चाहे हमने मानसिक श्रम किया हो, उससे हमारी कैलोरी बर्न हुई है, हम में थकान आ गई है, तो वो तो एक शारीरिक थकान सही है। लेकिन उसका क्या करेंगे कि हम केवल सोच सोच कर थक रहे हैं, सोच कर मतलब विचार करके नहीं, चिंतन करके नहीं, चिंता में हम बेवजह थके जा रहे हैं और हमें किया कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कर लिया होगा और ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अब हमें कुछ न कुछ ऊर्जा रिगेन करने की जरूरत है, फिर या तो हम सोएंगे लेटेंगे या हम सोफे पर पसर जाएंगे या फिर हम चाय की प्याली की ही तलब क्यों न महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चाय भी कहीं ना कहीं जब हम पीते हैं तो यही लगता है कि यार थोड़ी सी थोड़ा सा जोश आ जाएगा, शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी और उसमें जो तत्व हैं वो ऐसा करने में सक्षम भी हैं, वो कर भी देते हैं आपको थोड़ी देर के लिए, वो ताजा भी बना देते हैं। तो दरअसल ये जो आलस्य है ये एक मानसिक रोग है, मैं कहना चाहूंगा एक मानसिक अवस्था से अधिक कहीं रोग है, और यही वह रोग है मित्रों जो हमें अपने वर्तमान से काटता है, लगातार वर्तमान से काटता चला जाता है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा काम को अभी नहीं, या तो थोड़ी देर पर टाल देते हैं कि ठीक है अभी मैं थोड़ी देर में कर लेता हूं, या फिर हम कल पर टाल देते हैं, और न तो यह थोड़ी देर का सफर कभी पूरा होता है और यह जो कल होता है यह तो न आने वाला कल होता है जो कभी आता ही नहीं। और मुझे यह भी लगता है मित्रों कि यह जो संकट है हमारे आज का संकट नहीं है, यह संकट हमारे बहुत पुराने समय का संकट है, तभी गीता में कृष्ण को कर्म का उपदेश देना पड़ा और हमारे कबीर दास जी को यह कहना पड़ा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि जो कल करना चाहते हैं उसे आज ही कर डालो और जिसे आज करना चाहते हैं उसे अब ही कर लो, क्योंकि नहीं जानते हो क्षण भर में पूरा का पूरा संसार नष्ट हो सकता है, प्रलय आ सकती है और जब वो आ गई तो तुम उसे कब करोगे। और जो पिकासो हुए हैं तो बहुत महान चित्रकार हुए हैं, पाब्लो पिकासो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महान चित्रकार जिन्होंने घन पद्धति चित्रों में लागू की है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। वो तो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, बहुत ही जबरदस्त कर्मठ व्यक्ति थे। वो कहा करते थे कि मैं जब खाली कैनवास को देखता हूं, सादे कैनवास को देखता हूं, तो उसमें से मुझे सांड निकलता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि मुझे वो चुनौती दे रहा है और मुझे उससे जूझना है। मतलब इतनी ज्यादा पेंटिंग करने की उनमें तलब होती थी, ललक होती थी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कही कि जिन आप उन्हीं चीजों को कल पर टालिए जिन्हें आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहते हैं, बस जिन्हें आप करना ही नहीं चाहते हैं, आप उन्हें कल पर टालते रहिए। उनके कहने का अर्थ यह भी है कि यदि आप उसे कल पर टाल रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप उसे करना नहीं चाह रहे हैं। फिर उसे दिमाग से निकालिए ना, और जो करना चाह रहे हैं उसमें लगिए। ढेर सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीजें करने की जरूरत है। कुछ ही क्या, एक दो चीजें ही हम अपने लिए चुन लें कि हमें अपनी जिंदगी में यही करना है, तो बहुत बड़ी बात है। हमारी जिंदगी उसी से ही शेप ले लेगी, उसी से ही बदल जाएगी। और सच पूछिए तो हम उसी से ही, अगर हमें बड़ी महत्वाकांक्षा है और लगता है कि हम इतिहास के एक पन्ने बन जाएं, तो वही हमारे इतिहास का पन्ना हमें बना भी देगी। केवल एक काम, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि नहीं, इसको कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, हम करना नहीं चाहते हैं, हमारी वो जरूरत है, हमारे पहला काम है, वो प्राथमिकता में है, इसके बावजूद अगर हम उसे कल पर टालते हैं मित्रों, तो यह हमारे दिमाग के बहुत खतरनाक बीमारी की ओर संकेत कर रहा है, भयानक किस्म की मनोवैज्ञानिक बीमारी। और हम सबको चाहिए कि हम इस बीमारी को समझें, पकड़ने की कोशिश करें और फिर इससे निजात भी पाने में कोई कसर उठा न रखे। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस मैंने इसी पर बात, थोड़ी सी बातचीत करने का फैसला किया था। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।